Om Shanti. Good morning. Good morning. आप तीन दिन से बहुत सुंदर ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं और आई थिंक कि आपको ये ज्ञान सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जितना वो सुनने में अच्छा लगता है वो करने में आसान भी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये सब ज्ञान ध्यान सुनने के लिए ठीक है भैया, हम तो घर बार में रहते हैं, धंधा में लगे रहते हैं, ऑफिस बिजनेस ये कारोबार में लगे रहते हैं। इज इट रियली प्रैक्टिकल? इट इज, क्योंकि जैसा खाना बनाना और खाना खाना स्वाभाविक है और इजी भी, इसी तरह ज्ञान को न केवल सुनना मगर वो करने में भी इतना ही आसानी है। हाँ, सिर्फ बात यह है कि हम इससे यूज्ड नहीं है, आदि नहीं है, पर जैसे जैसे हम इसको करना शुरू करते हैं यू रियली एंजॉय लाइफ एंड लाइफ बिकम्स वेरी इजी वेरी कंफर्टेबल। तो आज हम हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता हम बहुत देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सोच है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग एक्शंस। हमारे बहुत सारा हम देखते हैं कि इट्स अलाइंड नहीं है, सोच कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, कुछ भी ठीक नहीं है। बेशक हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ भी है, मगर एक सुचारू रूप से हम जिंदगी गुजारे, हम बहुत शांति सुखमय जीवन व्यतीत करें, ये संभव नहीं हो पा रहा। इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही आवश्यक है। मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग अ फैमिली, मैनेजिंग सेल्फ फॉल्स इन सेम प्लेस। बहुत बड़ी इंडस्ट्री को चलाना, अपना घर को चलाना या स्वयं को चलाना, इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो बहुत ही आवश्यक है। आप मेडिटेशन छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जीवन छोड़ दीजिए, लेकिन एक साधारण जीवन जीने के लिए, दुनियावी जीवन जीने के लिए भी कुछ बातों की बहुत आवश्यक है। जैसे कोई भी योद्धा युद्ध में जाए और उसके पास शस्त्र ना हो वो युद्ध जीतेगा? हाँ जी, कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान में जाए, उसके पास शस्त्र है लेकिन शस्त्र शार्प नहीं है, यू नो, तलवार में जंक लगा हुआ है, तो बंदूक में जंक लगा हुआ है, गोली डालना भूल गए, तो क्या वो जीत पाएगा? चलिए, योद्धा जो मैदान पर जाता है जंग लड़ने, उसके पास शस्त्र भी है और सारे शार्प भी है, पर उसने कभी इसको उपयोग ही नहीं किया हो तो क्या वो जंग जीतेगा? तो शस्त्र होना भी आवश्यक है, वो शार्प रहना भी आवश्यक है और उसको उपयोग करना आना भी आवश्यक है। हम सिर्फ जानते हैं शस्त्रों के नाम, बंदूक है, तलवार है, वो है, ये है, मगर हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो जंग नहीं जीतेगा, जंग नहीं जीतेगा। इसी तरह जीवन में भी कुछ कुछ बातें हम सुन रखे हैं मगर इसका इस्तेमाल हम पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से हम अपने कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहां हम रहते हैं, कर्म करते हैं, वो कर्म क्षेत्र है, वहां हम जीत नहीं पाएंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, टू हैव अ हैप्पी एंड वेरी इजी लाइफ, certain things are very very important. तो वो बातें आज हम सीखेंगे. ये सुनने में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है. हाँ, ये सारी बातें हम सुन रखे हैं, वी नो देम, मगर इट्स ऑल अबाउट उस बात की यथार्थ अर्थ क्या है, उस बात को यूज कैसा किया जाए, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. ओके, या ऑलराइट. इस कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमें विजय होकर के जीवन व्यतीत करना हो, आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना हो, तो सबसे पहली बात, इसको शक्ति कहे, एबिलिटी कहे, एक टूल कहे, जो भी कहे, शास्त्र कहे, सबसे पहली बात पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति. हमारे में आजकल सहन शक्ति ना के बराबर हो गए हैं. अब देखिए ना, बच्चे जो है आजकल के, कुछ बात, एक बात कह दी, माँ बाप ने ही कुछ कह दिया, या उनके पसंद की बात नहीं हमने सुनी, तो वो सीधा जा करके जान दे देंगे. आठवीं मंजिल से कूद पड़ेंगे या फांसी खा लेंगे. यू नो, इतनी इजी अपनी जीवन को खत्म ही कर देते हैं. थोड़ी भी सहन नहीं है. ऐसी क्या जिंदगी है जो इंसान है और एक बात सहन ना कर सके. पर हमको लगता क्यों करे, हम क्यों करें सहन. अनावश्यक सहन करना गलत है, पर जो बात आवश्यक है वो करना चाहिए. हाँ या ना? अच्छा, आप में से कौन कहते हैं सहन करना कमजोरी है? चलो, आवश्यक भी, सहन करना कमजोरी है. कौन समझते सहन करना कमजोरी है? टॉलरेंस इज वीकनेस. कौन कहता है टॉलरेंस इज वीकनेस? हाथ खड़ा करें. कौन कहता है टॉलरेंस इज स्ट्रेंथ, सहन करना शक्ति है, वो हाथ खड़ा करें. बहुत अच्छा. जो दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया वो क्या समझते? एनीवे, क्योंकि जब कभी भी टॉलरेंस की बात आती है, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं. सबसे पहले, भैया हम क्यों करें, नंबर वन. सेकंड, ये सहन करने से और ही दबाते जाएंगे. चलो, एक बार हमने चुप हो गए, पर ये तो हर रोज थोड़ा ही होगा. ऐसा करने से ये तो और ही दबा देंगे हमें. पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड. हमको ये समझने लगेंगे इसको तो दबाया जा सकता है. हाँ, हमको टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं. तो इसीलिए वो एक बात करे, हम चार बात करेंगे. ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तब जी पाएंगे भैया, वरना कहाँ जी पाएंगे. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे मन में कूट कूट के भरा पड़ा है. पर वास्तव में सहन है क्या? What is tolerance? देखिए, बोलने के लिए शक्ति की जरूरत इतनी नहीं होती, चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है. गुस्सा करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, शांत रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है. रिएक्ट करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, सहन करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है. इट मीन्स सहन करना एक ताकत है, कमजोरी नहीं है. आप में से वेट लिफ्टर को देखा है? वेट लिफ्टर जो वेट उठाता है, देखा है आपने? जब पहलवान होता है, भारी भारी चीजें उठाता है, वो क्यों उठाता है? उठा उठा के कमजोर बनेगा या ताकतवर बनेगा? जितना उठाए, उठा उठा करके वो कमजोर बनेगा या ताकत उसका बढ़ेगा? तो सहन करना भी वजन उठाने के बराबर है, जो मानसिक शक्ति बढ़ती है. or the power to tolerate, ability to tolerate, सहन करने की शक्ति का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो अच्छाई है, हर परिस्थिति में हम अपनी अच्छाई को यूज करते रहे। मान लीजिए क्या बोले, अभी मैंगो का सीजन है, मीठा आम है, ठीक है ना, मीठा आम है, मीठा आम को काटेंगे, उसका पील करेंगे, इसका स्किन उतारेंगे, है ना, उसको मिक्सी में डालेंगे, उसको पीसेंगे, इसका मिठास छोड़ेगा, छोड़ेगा, हर परिस्थिति, उसको पकाएंगे, उसको वो करेंगे, हर परिस्थिति में प्रकृति के कोई भी चीज अपना मिठास नहीं छोड़ता। लेकिन इंसान को थोड़ी सी बात कर दे, अपनी मिठास छोड़ देता है। वैसे तो हम बड़े मीठे बोलते हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, एक बात इधर उधर हो गए, किसी ने झूठ बोल दिया, हमें तो बड़ा गुस्सा आता है। तो झूठ बोलना जितना पाप है, गुस्सा करना भी उतना ही पाप हुआ ना, है जी। तो हम अपना मिठास, परिस्थिति थोड़ा एडवर्स सिचुएशन आने पर, हम अपना स्वाभाविक जो नेचर है आत्मा का, वो छोड़ना क्यों है, छोड़ क्यों देते हैं। हमारा तो कोई चमड़ी नहीं उतार रहे, हमें काट कूट नहीं रहे हैं, हमें पीस कोन नहीं रहा है, ऐसा होने पर भी हमें मिठास नहीं छोड़ना चाहिए। पर इतना सब कुछ तो नहीं हो रहा हमारे साथ, पर हमारे अनुसार, हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई बात हो जाती है, हम उसको सहन नहीं कर पाते। इट मीन्स हम अपनी इच्छाओं में, हम अपनी बात में इतने अड़े हुए हैं कि इसके थोड़ा से इधर उधर हो जाए तो हम अपना सहन खो लेते हैं। वो तो छोड़िए, ये जो फूलदान है इधर का उधर रख दिया, अरे कई घरों में तो रामायण महाभारत हो जाता है। अरे क्यों रखा, हम रोज वहां रखते हैं, आप उठा के यहां रखते हो, आपका ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे क्यों करते हैं, ये यहां ही होना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो हमको इतनी छोटी सी बात के लिए भी मन विचलित हो जाता है, हाँ या ना, डिस्टर्ब हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो मन इतना कमजोर है, जो छोटी सी बात जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते। सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। कई बार हम जो देखते हैं, हमारे मन बहुत कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से हम कितने भी दृढ़ हों, लेकिन मानसिक रूप से हम बड़े कमजोर हैं, बड़े कमजोर हैं। तो इसीलिए मन बहुत जल्द डिस्टर्ब भी हो जाता, अशांत भी हो जाता और दुखी भी हो जाता। और वो दुखी अवस्था, अशांत अवस्था को लंबे समय हम पाल के रखते हैं, व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता, क्योंकि उनके अनुसार कुछ हो नहीं रहा। But that's not the way to live. हर दिन, हर 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 रोज, हर समय हमारे ही अनुसार चले संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों हो, क्यों आप हर रोज हमारे अनुसार चले, हम भी आपके अनुसार चलना चाहिए ना, ये बात है। बड़ी बड़ी परिस्थितियां होना आवश्यक नहीं है, छोटी छोटी बातों में भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी नेग्लिजिबल थिंग्स, हालांकि उसको कोई मायना नहीं रखता वो बात, पर उस बात में भी हम डिस्टर्ब बहुत जल्द हो जाते हैं, विच इज नॉट राइट। सेहत के लिए, मानसिक मेंटल हेल्थ के लिए, सेहत के लिए वो सही नहीं होता। मन को ऐसा दृढ़ बनाना चाहिए आयरन जैसे, लोहे की तरह, कोई बात का असर मन पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं अच्छी बातों का भी असर ना हो, हां जी। तो जो बात मन को डिस्टर्ब कर देता है, ऐसे डिस्टर्ब हमें घड़ी घड़ी नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति संसार के हर परिस्थिति के सामने डट के खड़ा हो सकता, एंड ही विल बी द लीडर। जो व्यक्ति डट के खड़ा रहे उसको 100 लोग 1000 लोग फॉलो करेंगे। छोटी बात में हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर जाए उधर जाए, विचलित हो जाते हैं, तो क्यों लोग आपको, आप पर क्यों विश्वास करेंगे, क्यों यकीन करेंगे लोग आप पर, जब आप खुद स्वयं पर यकीन नहीं कर रहे हो। सो यहां पर एक बहुत सुंदर चित्र है। ये छोटा सा बच्चा दिख रहा है ना, वो पेड़ को, आम का पेड़ है, वो पत्थर मार रहा है। हाँ, तो क्यों मार रहा है वो बच्चा, पत्थर क्यों मार रहा है आम के पेड़ को, पत्थर क्यों मार रहा है? हाँ, वो छोटा सा बच्चा, उसको आम खाने का दिल है और सामने आम से लदा हुआ पेड़ है। अब वो बच्चा छोटा है ना, वो प्लक नहीं कर पा रहा, तो उसको, उसके पास क्या है, वो आम तोड़ने का साधन क्या है उसके पास बेचारा, क्या है, पत्थर ही है। तो पत्थर वो फेंका, पर पेड़ ने क्या दिया, पेड़ ने रिटर्न में क्या दिया, आम दिया। तो पेड़ क्यों नहीं सोचा, अच्छा ठहर जा, तुम में जब पत्थर देता है मैं तुमको ईंट देता हूं, तो ईंट उठा करके क्यों नहीं फेंका। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, इट्स नॉट अ स्टोरी। जर्मनी में वॉर हुआ था, ईस्ट और वेस्ट के बीच में बहुत एक एनिमिटी यू नो फैल गया था। तो दुश्मनी के कारण युद्ध छिड़ गया, इतना हद तक कि एक दूसरे के चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे थे। तो एक वॉल बना दिया, मोटा दीवार बना दिया गया ईस्ट और वेस्ट के बीच में, हाँ जी। और फिर ईस्ट वालों ने सोचा हम अपना दुश्मनी उनके सामने जाहिर करेंगे। तो वहां जितने भी कीड़ा कुछ कचरा था, कूड़ा था, कूड़ा कचरा उठा करके दीवार के उस पार फेंका ये। और अगला दिन ये देखने आए कि ये लोग क्या करेंगे, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उस दीवार के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, वो सब अच्छी तरह से रखा गया था और एक छोटा सा चिट लिखा गया था। वो चिटकी में ये था, आपके पास जो था आपने हमें वो दिया, हमारे पास जो है हम आपको दे रहे हैं। सी, यानी सामने वाला कोई भी कुछ भी दे रहा हो, हम उनको क्या दे रहे हैं, दैट इज टॉलरेंस। आपके पास मिठास है, आप प्रेम पूर्वक बात कर सकते हैं, यू नो, आप किसी को हर परिस्थिति पर किसी को मदद कर सकते हैं, व्हाई नॉट। वो क्या कर रहा है, वो हमेशा डांटता ही रहता है, हमेशा हमसे झगड़ता ही रहता है, उसके बास्केट में बेचारा वही है, वो वही दे रहा है। पर यदि मेरे पास अच्छा अच्छी चीज है, मेरे पास लड्डू है मेरे बास्केट में, मैं लड्डू क्यों ना दूं? तो मैं क्या करती हूँ, लड्डू मेरे पास मेरे स्वाभाविक चीज है, उसको बगल में रख देते, अच्छा आपने पत्थर दिया, ठहर जा। तो जो चीज मेरे पास है भी नहीं, मैं जानती भी नहीं, उसको बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं बाह्य मुक्ता। मेरे स्वधर्म जो है वो मिठास है, उसको हम बगल में रख करके जो हमारे पास नहीं है वो ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, आप जो देंगे हमें वही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम वो देंगे जो हमारे पास है, बल्कि जो सामने वाला दे रहा हो उस पर तरस आना चाहिए, बेचारे उसके पास नहीं है, हाँ जी, तभी तो नहीं दे रहा, पर हमारे पास है, हम तो दे सकते हैं। आजकल किसी को देकर के मुस्कुराना भी, मुस्कुराहट देना भी हम सोचते हैं, अच्छा ये मुस्कुरा रहा है तो हम मुस्कुराएंगे, ये नहीं मुस्कुराता है तो हम क्यों मुस्कुराए भैया, जबकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता, हाँ जी, फिर भी हम नहीं मुस्कुराएंगे। और यदि सामने वाला नहीं मुस्कुराता है, मेरे मुस्कुराने पर भी वो नहीं मुस्कुराता है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? बेचारे उसके पास नहीं है तभी तो नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है, पर मेरे पास तो है, मैं तो बहुत दे सकती हूं। एटीट्यूड ऑफ गिविंग, एटलीस्ट अ स्माइल। सो ये है पावर टू टॉलरेट। परिस्थिति क्या भी हो, लोग क्या भी करें, कैसा भी व्यवहार हो, मेरी अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें जीत के ओर ले जाएगा और हमें एक संतुष्टि प्रदान कर, एक तृप्ति अंदर प्रदान करती है जो कि इनवैल्यूएबल है। कैन यू बाय कंटेंटमेंट? कैन यू बाय कंटेंटमेंट? तृप्त कहीं खरीद कर सकते हैं आप? तो वो मिलेंगे आप। और दूसरी बात, दूसरी चीज है पावर टू एडजस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। यह सागर दिखाया है, कैन यू सी दैट ओशन? यह सागर दिखाया है, सागर जो है ना उसमें लहरें होते हैं। सागर के अंदर कुछ भी आप फेंक दीजिए, आप पत्थर फेंक दीजिए, वो पत्थर अंदर समा जाएगा, है जी? आप कोई हल्की चीजें फेंक दीजिए, वो लहरें वो चीजें उठा करके किनारे पर लेके आ जाएगा, पर वो अपने आप को दूषित नहीं करता। तो ये बहुत सुंदर एक हर इंसान के अंदर, वैसे टॉलरेंस भी हम सब में है, ऐसा नहीं है नहीं है, पर हम उसको संकुचित कर दिया है। इट्स वेरी नैरो, वो फुल स्विंग, फुल फ्लेज्ड यूज नहीं होता। एडजस्टमेंट भी हम करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते हैं, हमेशा नहीं करते, फुल फ्लेज पे नहीं करते। एडजस्टमेंट इज जस्ट अ सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हम अपने आप को व्यक्तियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के व्यवहार के अनुसार अपना रास्ता बना लेना चाहिए, उसमें उलझना नहीं चाहिए। हम उसमें उलझ जाते हैं, क्यों क्या? मान लीजिए आप रास्ते में जा रही हो, ड्राइविंग, बहुत बड़ा पत्थर आपने देखा, तो क्या करोगे? चलते रास्ते में पत्थर देखा तो क्या करोगे? आप वहां खड़ा हो जाओगे पत्थर और शुरू हो जाओ, पत्थर किसने फेंका? आजकल किसी को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करो, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, या उठाओ यू नो हैमर को और उसको पत्थर को तोड़ना शुरू कर दो, तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे? दैट्स नॉट योर यू नो, ये आपका काम ही नहीं है। जिसने भी रखा है, जो भी है, किसी भी परिस्थिति पर वो पत्थर मेरे रास्ते पर पड़ा हो, अपना रास्ता बना लीजिए ना। पानी का ये सबसे अच्छा गुण है, आप एक बॉटल में या कोई भी इसमें पत्थर डाल दीजिए, छोटे छोटे कंकर डाल दीजिए, छोटे छोटे रेत डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, पानी अपना रास्ता बना लेगा, नीचे तक पहुंच ही जाएगा, हाँ या ना? ये गुण है फ्लेक्सिबल। क्यों क्या उलझन में नहीं उलझे, अपना रास्ता कैसे बनाना चाहिए वो बना लीजिए। हम वहां खड़े हो जाते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज द सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट इज द सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो व्यक्ति जीवन में फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, अकड़ के रहता है, वो टूट के किसी भी समय बिखर सकता है। अकड़ना मुर्दे की निशानी है, हैं जी? फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्ट होना तो जिंदगी है, जीवन है, क्योंकि मुर्दा तो अकड़े रहता है ना, उसको उसका हाथ इधर उधर करो वो करेगा, तो मरा पड़ा है, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो थोड़ा भी एडजस्ट नहीं होगा। तो यदि हम भी जीवंत इंसान अपने जीवन में थोड़ा इधर उधर नहीं हो पाते हैं तो हम भी तो कहां जिंदा है भैया, मुर्दे के समान ही तो है। तो कोई बात नहीं, इधर उधर हो जा सकते हैं। हाँ, हमेशा नहीं तो जब जरूरत है तब तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर किसी के साथ नहीं तो कम से कम अपनों के साथ तो होना ही चाहिए। हाँ जी, जिनके साथ जिंदगी भर आपको जीना है, जिनके साथ जिंदगी भर आपको काम करना है, जिनका चेहरा आपको पूरा जिंदगी देखना है, उनके साथ तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होने में कोई वहां क्यों अभिमान दिखाना, मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आया। जिनके साथ आपको रोज रहना है, आपके अपने हैं, वहां क्या अभिमान दिखाना, वहां क्या ईगो है, अपने हैं ये। थोड़ा भी तो व्यवस्था तो चाहिए कि कहां क्या दिखाना चाहिए। नहीं, इसलिए आजकल जो जीवन में लोग बहुत जल्द सेपरेट होते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों के लिए अपनों को छोड़ जाते हैं। अच्छे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है, नसीब से मिलते हैं। हम अपने अकड़पन के कारण यदि उस व्यक्ति को, इंसान को खो दिया, फिर जिंदगी भर के लिए खो दिया। हो सकता है वो अच्छा इंसान फिर कभी भी आपको ना मिले। तो इसलिए हर संबंध के लिए 100 मौका जरूर देना चाहिए बिफोर यू नो हमेशा के लिए ना कहने के पहले थोड़ा सोच लीजिए। दैट्स फाइन, या मे बी द वे आई थिंक इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मे बी द पर्सन इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, वी जस्ट हैव टू वेट, गिव चांसेस। या जब हमारे अंदर टॉलरेंस आ जाता है, सहन शक्ति आ जाती है, एडजस्ट करने की एबिलिटी आ जाता है, तो हमारे अंदर एक और गुण और बात आ जाती है, वो है पावर, परखने की शक्ति। हम अपने जीवन में परख नहीं सकते हैं कि सही क्या, गलत क्या, राइट क्या, रॉन्ग क्या, कौन सच्चा कौन झूठा, ये हम परख ही नहीं पाते हैं। कई बार गलत लोगों को हम सही मान लेते हैं, धोखा खाते हैं, और उसके बाद जब हमारे सामने सही व्यक्ति आता है हम उसको गलत समझ रहे होते हैं, हम उसको धोखेबाज समझ रहे होते हैं। तो हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है, सही को सही देखने की, गलत को गलत देखने की ताकत नहीं है, क्योंकि हमारा मन इतना कमजोर हो चुका है। योग क्यों करना, योग इसलिए नहीं करना कि आपको योगी बन जाना चाहिए, योग इसलिए सीखने की आवश्यकता है आप आध्यात्मिक बन जाए। अरे कम से कम जो जिंदगी, जो जीवन दुनिया में अपने घर परिवार में रह करके खुशी खुशी जीना चाहिए, उसके लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चाहिए। क्योंकि घर परिवार कोई कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, इसलिए उसको कर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है, या कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यानी वो क्षेत्र जहां हम कर्म करते हैं उसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। जहां पग पग में नेगेटिव होंगे, हमारी इच्छा विरुद्ध होगा, वहां हमें रह करके एक कंफर्टेबल जीवन गुजारना है। हमें घर बार नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, बाल बच्चे संबंधियों को नहीं छोड़ना है, हमें रहना वही है और अच्छी तरह से जीना है। इसके लिए ये सारी बातें जरूरत है, कोई योगी बनने के लिए नहीं। एक प्रश्न पूछ सकती हूँ मैं, आए या आप घर परिवार में रह रहे, घर बार में रह रहे, दुनिया के जीवन जी रहे हैं, आप खुश हैं? हेलो, जाग रहे हैं ना कि सो रहे हैं? आज जो सो रहे हो जाग जाए। एक छोटा सा प्रश्न है, आर यू रियली हैप्पी? खुश हैं आप? सी, यू हैव नो आंसर। साइंस के थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप फटाफट बोलेंगे, हैं जी? न्यूटन लॉ, फलाना डिगना, जो भी है दुनिया भर के आसमान धरती सब प्रश्नों का उत्तर फटाफट देंगे। छोटा सा प्रश्न, कंफ्यूजन क्यों? हां भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते, फंसे पड़े हैं बीच में। ना किस लिए बोले भैया? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। और हां क्या बोले? हर रोज नींद तो आती नहीं। इसको कहते बंधन। बंदा बंधन में फंसा पड़ा है, ना निकला जा सकता है ना निकाला जा सकता है, इसको कहते बंधन। ना छोड़ा जा सकता है ना पकड़ा जा सकता है, करे तो क्या करे, ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं? हाँ ये ना, आपको पता है मैं एक जोक बोलती हूँ, है ना? यदि नींद आ रही है तो आपको थोड़ा नींद से जागृत मिलेगा। ये रियल स्टोरी है, मेरी अपनी कहानी है। 5 साल पहले, लॉन्ग अगो, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स अगो, आई वाज ट्रैवलिंग, मैं ट्रेन में जा रही थी। एक्चुअली आई एम मोर देन 60 इयर्स, आई क्रॉस्ड माय 60, ये शरीर का उम्र पूरा, तो दिखने में छोटे लगते ना तो लोगों को लगता है छोटी बच्ची है, तो उस समय तो और ही छोटी दिखती होगी। तो मैं ट्रेन बोर्ड किया, ट्रेन चलना शुरू हो गया, तो मेरे सेकेंड ऐसे कंपार्टमेंट था, तो यहाँ दो होता है, साइड में भी होता है ना, तो वहां एक यंग कपल आए, एक छोटा सा बच्चा लेकर के, वो भी चढ़े, वो मेरे वहां सामने बैठ गए साइड में। तो जब से वो लोग बोर्ड, ट्रेन बोर्ड किया, वो आपस में मैं देख देख करके वो बातें कर रहे थे। मेरे को भी एहसास तो होता है ना कि लोग मेरे को देख के मेरे ही बारे में कुछ बात हो रही है, इतना तो मुझे समझ आ गया। फिर मैंने इग्नोर किया, लोग कहीं बातें करते हैं। तो 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया, तो वो भाई उठ के आया मेरे पास और बोला, बहन जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने कहा बैठो भैया, बोलिए बात करिए, क्या बात करना? उसने कहा, मैं जब से मैं ट्रेन बोर्ड किया हूँ आपको देख रहा हूँ। मैंने कहा हाँ मैं भी समझ रही हूँ कि आप मुझे देख रहे हो। कहता बेचारे, वेरी सैड। मैंने कहा क्या हो गया? कहता आप इतनी छोटी उम्र में घर बार छोड़ के आ गए, वेरी सैड, वेरी पुअर, शादी भी नहीं कर सकते, ओहो, आप बाहर का खाना भी नहीं खा पाएंगे और सारी जिंदगी ये सफेद कपड़ों में लिपटे रहोगे, इतनी छोटी उम्र तो है, एंड आप यहां वहां जा भी नहीं सकते, आपको देख करके हमें बड़ा वो लगता है। ऐसा बोलता गया, मेरे कहा ओ हो, कोई किसी के मृत्यु पर भी इतना शोक नहीं दिखाते जितना आप शोक मेरे सामने बोल रहे हो। एनीवे, मैंने कहा हो गया भैया, वो 5-7 मिनट तक बोलता रहा, वो आप ये भी नहीं कर सकते, अभी वो भी नहीं कर सकते, अभी ऐसे नहीं भी कर सकते, आपको देख करके मेरा बड़ा तरस आ रहा है। मैं भी पहला बीच में मैं इंटरप्ट करने की कोशिश की, पर तो वो तो रुक ही नहीं रहा था। मैंने कहा बोल लो भैया, बोल लो, जितना बोलना है बोल लो। मैंने कहा हो गया? कहता अभी और क्या बात करे बहन जी, बस क्या बात करे। मैंने कहा देखिए, आप तो हरा पीला लाल सब पहन सकते हो। कहता हाँ हम तो सब पहन सकते हैं, आप फैशन भी कर सकते हो। कहता हाँ बहन जी, हम तो वहाँ सलून में वो करते हैं, हम सब करते हैं। कहता आप बाहर का कुछ भी, बर्गर पलाना डिगना जो भी है वो खा सकते? हाँ हाँ, पार्टी में जाते खाते पीते सब है, आपने शादी भी किया हुआ है? कहता हाँ बहन जी, शादी कर लिया। आपका बच्चा भी है? कहता हाँ। एक बात बताइए, आप खुश है? कहता क्या खुशी की क्या बात करते हो बहन जी, 15 मिनट से मैं अपनी बीवी को समझा रहा हूँ कि इस बहन जी से मुझे 2 मिनट बात करना है। वो कहते कौन बहन जी, कब से जानते हो तुम? बहन जी को भी नहीं छोड़ते हो हैं? इनको कब से पहचानते हो? क्या बात करना, पहले मेरे से बोलो हैं? अरे ना, शादी के पहले ना मैं बहुत खुश था और मेरे को लगा शादी के बाद और खुश होऊंगा, अरे मैं तो फंस गया हूँ। वो अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। मैंने कहा भैया, लाल पीला पहनना, यहाँ वहाँ जाना, फैशन करना, घूमना फिरना, बात वो नहीं है। सफेद पहन रहे या रंगीन पहन रहे, बात वो नहीं है। जीवन में खुश है या नहीं है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो उसको लगता है, उसको लगा कि ये सफेद पहन करके बिचारी फंस गई, और हमको लगता है ये लाल पीला पहन के फंसे हुए हैं। हाँ जी, दुनिया कहे हमें पागल, हम कहे दुनिया पागल। अब हे ईश्वर तुम ही बता रहे हैं पागल है कौन। तो ये वाली बात हो गई। हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो दैट डजंट मैटर, पर हम ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति है भी कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। आप कमा रहे हैं, पोस्ट पोजिशन है, आप एजुकेटेड हैं, आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दुनिया भर की बातें हैं, बट ये सब किस लिए सब बनाते चले गए हम? टू बी हैप्पी इज़न्ट इट? पर वो तो है नहीं, वो तो कहाँ कब का खो गया। जिसको पाने के लिए सब करते रहे वो तो मिला नहीं। पर जो खुशी हमने पाया है आपको इसका टेस्ट भी नहीं है, इसलिए बिचारे लगते हैं, वेरी सैड। आनंद क्या है जीवन का, इसका टेस्ट तक भी नहीं है, हमें है। हम बहुत नाच से बोलते हैं वो हमें है, हमने वो पाया है। इंडिपेंडेंट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्या जोरदार अनुभव है ये। तो वो अनुभव हम योग से प्राप्त कर सकते हैं। या एनीवे, तो ये है परखने की शक्ति। जैसे एक ज्वेलर होता है, जौहरी, वो असली हीरे और पत्थर का भेद कर पाता है क्योंकि उसको वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो पत्थर को हीरा नहीं समझता। अब हमारे सामने पत्थर और हीरा रख दिया जाए, हमें तो कोई समझ नहीं आएगा। हमको लगता है कौन सा ज्यादा चमक रहा है, हमको लगता है वही हीरा है, पर ऐसा होता नहीं है। ज्यादा चमकने वाली चीज हीरा, जरूरी नहीं है कि वो हीरा हो। ऑल ग्लिटरिंग इज नॉट गोल्ड, हर चीज जो सफेद है वो दूध नहीं होता। एंड इसके लिए जब हमारे पास ये सारे 3 एबिलिटीज आ जाएं, तो हमारे पास एक और ताकत, और शक्ति, और एबिलिटी आएगी, वो है पावर टू डिसाइड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर इंसान को अपने जीवन में पग पग में, हर स्टेप में उसको डिसाइड करना पड़ता है, बात निर्णय करना पड़ता है, मुझे उठना है बैठना है, जाना है नहीं जाना है, खाना है नहीं खाना है, हर बात में हमें चूज करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। यदि एक बार हमने जिंदगी में गलत डिसीशन लिया, गलत निर्णय लिया, संभवतः पूरी जिंदगी उस गलत डिसीशन के साथ आपको जीना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं होंगे। एंड इट्स कॉल्ड एज द पावर ऑफ चॉइस। जो भगवान ने हमें, कभी ऐसा नहीं समझना कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं था, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हर दरवाजा मेरी जिंदगी का बंद हो गया था, ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। पर हम इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने तनाव में आ जाते हैं कि सामने खुला हुआ दरवाजा भी दिखाई नहीं देता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, उसको सरल उपाय, सरल समाधान आंखों के सामने होते भी दिखाई नहीं देगा। इसी आंखें बंद हो जाते हैं, चाहे मोह में, अभिमान में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, आंखें बंद हो जाते हैं। सामने समाधान होते भी, दरवाजा होते भी, दूसरा उपाय होते भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए जब कभी भी हम डिसीशन कोई बात का लेते हैं, प्लीज थोड़ा सा धैर्य, एक है सहन, टॉलरेंस, एक है पेशेंस, धैर्य से थोड़ा धीरज रखिए। कहां भागे जा रहे हो भैया? हां जी, बगैर मंजिल के पता भागोगे कहां? मन को शांत रख करके ये एक मिनट, 60 सेकंड्स कोई बड़ी बात नहीं है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मन को शांत रख करके ही कोई निर्णय आप ले। और एक बात ध्यान रखें, कभी भी बहुत ज्यादा खुश होंगे कोई निर्णय नहीं लेना, खतरा है भैया। बहुत ज्यादा खुशी में निर्णय नहीं लेना, बहुत ज्यादा गुस्से में निर्णय मत लेना, बहुत दुखी मन हो, व्याकुल हो, कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि सारी स्थितियों में मन स्थिर नहीं होगा। इन सारी स्थितियों में गलत निर्णय ही लेंगे, क्योंकि ये इमोशनल इम्बैलेंस स्थिति है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। संतुलित मन से ही कोई भी डिसीजन सही रहेगा, इसलिए यहां बैलेंस दिखाया गया है। बैलेंस, मन शांत रखिए, एक मिनट सारी बातों को भुलाए, मन को फ्रेश माइंड से कोई डिसीजन, इवन आप किसी को डांटना भी हो ना, बेशक आप डांटे एक मिनट के बाद, आपको गुस्सा भी करना, कोई बात नहीं, करिए एक मिनट के बाद। एक मिनट के बाद फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आसमान धरती जितना। वही बात आप धीरज से समझा भी सकते हैं। आप एक बात बताइए, गुस्से से आज तक कौन इंसान जीत पाया होगा, सब कुछ प्राप्त कर लिया होगा, खुशी खुशी जिंदगी जीता होगा? मान लिया कि आपका गुस्सा जायज है, पर इससे खुशी तो प्राप्त नहीं होगी ना। गुस्सा करके कौन अच्छा सा खा पी करके अच्छा खर्राटे मार के सोएगा? हाथ खड़ा करें। आपके घर में या ऑफिस में किसी ने गलती किया, गलती करने पर गुस्सा जरूरी है भैया? चलिए न्याय भी, न्याय आपने किया, गुस्सा किया, जरूरी था गुस्सा किया, गुस्सा करने के बाद पेट भर के खा पी करके आराम से कर्राटे मार के सो गए निश्चिंत होके, हो पाएगा? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। गुस्सा ऐसा पॉइजन है जो खून भी सूख जाता है इंसान का, घर का मटका तो सूखेगा ही सूखेगा, यानी प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाएंगे, जो बरकत होना चाहिए वो तो खत्म होगा ही, पर हमारे शरीर का खून भी सूखेगा, और उसका असर लंबे समय तक, कई कई बार सारा दिन भी रहेगा उसका गुस्से का असर। है किसी को अनुभव गुस्से का असर सारा दिन है? किस किस को है गुस्से का असर सारा दिन है? है ना? हाँ, सारा सारा दिन होता है, मन बड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो जब अपने आप को सजा क्यों देते हो? गलती उनका सजा मैं भोगत रही हूं, क्यों भैया? गलती उसने किया, गुस्सा मैं करके मैं अपने सेहत पर, अपने मन पर, क्यों ले आना जरूरी है। इसलिए सोच समझ कर शांत मन से संतुलित मन से कोई भी निर्णय लेना, और जब लेना सबका हित का लेना। जब आप निर्णय लेंगे कभी भी स्वार्थ का ना ले, स्वार्थ पक्ष से निर्णय ले, स्वार्थ पक्ष से ना ले। कभी भी अभिमान वश मोह वश निर्णय ना ले, गलत ही होगा। गलत निर्णय का परिणाम केवल और केवल आपको ही भुगतना पड़ेगा। और ये सिद्धांत है, इट्स अ लॉ। द वन हु मेक्स डिसीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। जो व्यक्ति निर्णय लेता है और निर्णय के तमाम परिणामों को उनको स्वयं भुगतना पड़ेगा, ये लॉ है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने के पहले सोच समझ करके ले। और हमारे पास पांच एबिलिटीज हमने धारण कर लिया हो तो फिर हमारे पास एक और अपने आप बहुत सुंदर एक ताकत आएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज पावर टू सेज। अब मेरे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कैसे भी व्यक्ति आए, हम उसको डट के सामना कर सकते हैं। उसको कहते हैं सामना करने की शक्ति। अब हम सामना करने से भागते हैं, एस्केप करते हैं, बहाना बनाकर उस बात से, परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात पूछूं, अभी कोई नहीं है इसलिए पूछ सकती हूं, आप में से कईयों ने कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, अपने रोज रोज के सिर दर्द से भाग के भी आए होंगे। भैया 3 दिन तो छुट्टी मिलेगी है जी, वहां क्या होता है वो तो छोड़ो, पर 3 दिन के लिए ये सब देखना तो नहीं पड़ेगा, और 3 दिन यहां से भागो अपने आप सेट हो जाएगा, जब आएंगे तब देखा जाएगा। ऐसा कौन कौन आया, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। आपको पता है एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन रीड योर आईज, मैं पॉइंट आउट करके मैं बता भी सकती हूं कौन कौन ऐसा आया है। मैं बताऊंगी नहीं बट आई कैन एनीवे, नो प्रॉब्लम। कोई अपने घर के परिस्थितियों से भाग आए होंगे, अपने दफ्तर के परिस्थितियों से भाग आए होंगे, दोस्तों के, व्हाटएवर इट कुड बी, या अपने सेहत के हिसाब से अपने आप में जो उलझा हुआ होगा, ऐसे भी कई होंगे। घर परिवार में कोई ऐसी बात नहीं होंगी, हो सकता है अपने बिजनेस में, अपने दफ्तर में ऐसी बात नहीं होंगी। व्यक्ति खुद अपने आप में अपने व्यक्तिगत जीवन में उलझा हुआ होगा, कोई संबंधों में उलझा हुआ होगा। चलो भैया 4 दिन भागो है जी, चलिए किसी भी कारण से आए, आप भगवान के घर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत किसी भी कारण से आए हैं आप, अपने घर में आए हैं, और यहां कोई भी इंसान खाली हाथ नहीं जाएगा, ये तो गारंटी की बात है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो शफा पाके जाएगा। और हमें आशा है कि आज तो आपका प्रस्थान का दिन है, हैं जी, आपको अच्छा लग रहा है जाते हुए, जाना चाहेंगे वापस? कौन कौन जाना चाहेगा, कौन कौन नहीं जाना चाहेगा? पर टिकट तो ले आए हो ना, वापसी का लेकर के तो आए हो, हैं जी, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप आए और जब आप जा रहे हैं, अवश्य आपके मानसिक स्थिति में अंतर आया होगा, और भगवान आपके मन के वो झोली में जरूर वो शक्ति डाला है जो अब जाने के बाद आप कम से कम कुछ समय तक तो शांति से आप अपना जो जीवन है व्यतीत कर सकेंगे। खाली हाथ यहां से कोई नहीं जाएगा, हैं जी। चलिए, भोजन अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, सबने आराम अच्छा किया, किस किस ने अच्छा नींद किया यहां पर, जो घर में नहीं आ रहा था यहां पर, वेरी गुड। यहां किसको नींद नहीं आई, सब सोए अच्छी तरह से, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ का वातावरण किसको बहुत अच्छा लगा? वेरी गुड, आनंद लिया वातावरण का? थोड़ी गर्मी है पर फिर भी ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़े। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों के, बड़ी बड़ी बातों को फेस कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा चीज है, एक ऐसी चीज है जो हम थोड़ा सा अटक जाते हैं, वो है मृत्यु। चाहे अपनों के सबसे करीब वाले, जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं, उनके मौत होने पर हम उसका सहन नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान जो है न केवल बंधन में जीता है, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा दुख देने वाला बंधन है मोह का जाल, मोह का बंधन। उस मोह का बंधन सोचने मात्र भी मन घबराता है, इंसान हमसे दूर चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, मृत्यु को पाता है, तब उसको फेस नहीं कर पाते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पे एक युगल आए थे, पति पत्नी आए थे, दोनों डॉक्टर्स थे, और वो अपना खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं, खुद के उन्होंने उनका हॉस्पिटल है, जहाँ वो पत्नी भी डॉक्टर है और पति भी। तो वो यहाँ आए थे मेडिटेशन कोर्स लेने के लिए, और 3-4 सेशंस के बाद वो डॉक्टर ने, पति ने बोला कि बहन जी, मेरी जो पत्नी है वो डॉक्टर, खुद डॉक्टर, शी इज अ सर्जन, वो कुछ समय से मानसिक मन से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, इसलिए हम यहाँ पर मेडिटेशन सीखने आए। मैंने कहा क्या दिक्कत है? वो कहते हैं, पत्नी ने कहा मैं बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। पत्नी कहती है कि हम दोनों पति पत्नी ये हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारे साथ और भी कंसल्टेंट्स हैं, और भी डॉक्टर्स हैं जो काम करते हैं। कई बार मेरा पति और स्थानों में चले जाते हैं कंसल्ट करने के लिए, तो मुझे अकेले अपने पूरा हॉस्पिटल संभालना होता है। इमरजेंसी आते हैं आईसीयू में, कई बार उनकी मृत्यु रात को हो जाती है और मुझे वहां रहना होता है, लाश के साथ मुझे रात भर बिताना होता है, और ये मेरे लिए, इट्स माय प्रोफेशन, ये मेरे लिए कॉमन सी बात है। पर एक बार, एक दिन अचानक मेरे मन में ये विचार आया, ये लाश है, कल को मैं मर जाऊंगी तो कैसा होगा? बस उस दिन से उसको लाश से डर लगने लगा है, वो अपनी मौत के बारे में सोच सोच के बहुत बेचैन हो रही है। एंड शी हैज लॉस्ट फ्यू इनका शरीर का वो घट गया, वजन घट गया, खा नहीं पा रही, उसको डर लग रहा है, हर बात में डर लग रहा है। जब भी पति चला जाता है उसको लगता है नहीं, पता नहीं मैं मर जाऊंगी, आप चले जाएंगे तो मेरा, ये अपनी खुद की मौत के बारे में सोच सोच के वो बहुत कहती बहन जी, इससे मैं बाहर कैसे आऊंगी, मरना तो सबको ये मुझे पहले से पता है, और मैं खुद वो सब देखा है और किया है, और रात भर दिन भर हम यही मौत के साथ ही रहते हैं, ये हमारा पेशा है। पर व्हेन इट कम्स टू माय ओन डेथ, कहते मैं अपनी खुद का मौत को मैं सामना नहीं कर पा रही हूं, ये मेरे वो सो ही नहीं पाती है, कहती है मैं सोऊंगी शायद मर जाऊंगी तो क्या होगा, तो सो ही नहीं पाती है, व्यक्ति नहीं सो पाएगा तो खा भी नहीं पाएगा, तो वेट उनका ऐसे वजन घट गया। हाँ जी, तो अभी कोई क्लिनिक में वजन घटाने की जाने के लिए जरूरत नहीं है, इस तरह के सोच ही मन में आ जाए ना, खुद ब खुद वजन घट जाए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूं ऐसा सोचो वजन घटाने के लिए, नहीं, पर इट हैपेंड टू हर एंड शी वॉज वेरी टेरिफाइड इनसाइड, अंदर। तो बाबा यहां हमें बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, मौत तो किसी का होता ही नहीं है, कोई नहीं मरता, मृत्यु ये शरीर का है, आत्मा का तो है नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। अब इट्स ऑल अबाउट माय आइडेंटिटी, इट्स अ आइडेंटिटी इश्यू, इट्स अ आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। ऑल व्हाट एवर हैपेंस इन योर यू नो, हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ने का कारण ये है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं। मृत्यु इस शरीर का है। हाँ, कल ये साड़ी मैं चेंज कर दूंगी, ये शाम को इस साड़ी को मैं चेंज कर दूंगी। साड़ी ही बदल रहा है ना, मैं तो नहीं बदल रही हूं। ये साड़ी गया, दूसरी साड़ी आई, इसमें दिक्कत क्या हुआ? अच्छा, साड़ी नहीं है तो मुझे और ही खुशी होगी। तो ये शरीर भी एक वस्त्र मात्र ही है जिसको हर किसी को बदलना है, चाहे ना चाहे। मगर आत्मा या जितने भी हैं, किसी की मृत्यु नहीं होने वाली। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। तो जब ये ज्ञान हम याद रखते हैं तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। अरे, ये तो नया वस्त्र मिलने वाला। एंड भय इसलिए होता है क्योंकि हमें बाद में क्या होगा इसका ज्ञान नहीं है। मर जाने के बाद क्या होगा हमको ज्ञान नहीं, कहां जाएंगे, क्या होगा, ये ज्ञान न होने कारण हमें भय होता है। अब तो हम सेटल्ड है, इसके बाद क्या? तो बाबा ने मृत्यु के पश्चात भी क्या होगा, मृत्यु के उपरांत हमारी जर्नी क्या होगी, इसका ज्ञान भी हमें दिया हुआ है। इसलिए भी हमें कभी डर नहीं लगेगा, ये बहुत सुखद है। और तीसरी बात, मृत्यु कोई दर्द वाला चीज नहीं है, इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसेस, इसमें दर्द नहीं होने वाला। ये साड़ी निकाल के दूसरी साड़ी पहनने में दर्द क्या होगा? इतनी सी बात, क्योंकि हम इस शरीर से अटैच्ड है, क्योंकि हमें इस शरीर से इतना मोह है, हम पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ने में हमें दर्द है। मोह में दर्द है, मोह में दुख है, मृत्यु में दुख नहीं है। तो जब ये बात हम समझ जाएंगे तो मृत्यु पर भी जीत पाएंगे, मृत्युंजय बन जाएंगे, हमें दुख नहीं होगा, हम उस सिचुएशन का भी सामना कर सकते हैं। या एंड पावर टू कोऑपरेट, चाहे हम घर में हैं, हम ऑफिस में हैं, हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो एक तो ये जरूर हम सबके सामने आती है, हम एक दूसरे के साथ सहयोगी बन करके कोई कार्य करें। कहां सहयोगी बनना है, कहां कोऑपरेट करना है, हम दूसरों के साथ मिलकर के काम करना है, कहां हम दूसरों से काम कराना है, ये दोनों ज्ञान आवश्यक है। जहां दूसरों के साथ मिलके काम करना होगा, हम हाथ बांध करके कह रहे तुम काम करो, हम यहां बॉस की तरह बैठे रहेंगे, शायद वो काम नहीं होगा। और जहां हम हाथ बांध करके बैठ करके दूसरों से कराना होगा, वहां पर आप वहां जाकर के खुद करने लगो, वो भी सही नहीं होगा। सो कहां डेलीगेट करना है, कहां स्वयं करना है, ये भी ज्ञान है। कई बार हमारे पास मैन पावर होता है, लोग करने के लिए होते हैं, पर हम उनसे कराते नहीं है, हम खुद लगे रहते हैं। तो लोग भी कहते, लगे रहो भैया, हम तो जाएंगे। हाँ जी, तो ये पावर टू कोऑपरेट, कहां काम निकलवाना है, कहां काम कोऑपरेट करना है, ये भी ज्ञान है, ये भी शक्ति है। और पावर टू विड्रॉ, हाँ जी, हम कई बातों में बहुत विस्तार में चले जाते हैं, जहां दो मिनट में काम खत्म करना है हम बहुत समय लगाते, क्यों, क्या, कैसे हुआ, ऐसे नहीं, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, आप उस दिन भी किया था, ये जरूरी नहीं है। जो काम पांच मिनट में करके खत्म कर सकते हैं, चैप्टर क्लोज कर सकते हैं, उसको हम सारा सारा दिन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत चलता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बाल का खाल निकालने वाली बात हो जाती है ना, और बहुत फास्ट सोचते हैं तो हम थक जाते हैं। जब व्यक्ति मन से थकता है वो शारीरिक रूप से प्रोडक्टिव नहीं होता। या? तो इसीलिए जब जरूरत है तब ही बोले, जितना जरूरत है उतना ही बोले, जब जरूरत है तब करे, जब जरूरत है उतना ही सोचे, अन्यथा अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने वाणी को अपने आप में लगाने की एक बहुत सुंदर कला। इसलिए कि यहाँ टर्टल दिखाया है, टर्टल्स, टर्टल, टर्टल, हाँ, वो जब काम करने हैं अपने कर्मेंद्रियां बाहर निकालता है, जब उसका काम खत्म होता है अपने कर्मेंद्रियों को अपने आप में समेट लेता है, संकीर्ण करने की शक्ति। कई बार हम मीटिंग्स में बैठते बोरिंग, हमको पता है मीटिंग से कोई ले उपयोग नहीं है, लोग ऐसे बोल बात करते हैं फिर समोसा खा के निकल जाते हैं, हाँ इससे आउटकम तो कुछ होता नहीं है, क्या फायदा भी है बैठ के। अगर नहीं बैठेंगे तो भी कहेंगे ये तो मीटिंग में होते नहीं है और ये ऐसे हैं, तो बैठना जरूरी है, जहाँ नहीं भी हमें अच्छा लगता है सम्मिलित होना जरूरी है, लेकिन मन वहां पर लगाना आवश्यक नहीं है। अब यहां पर भी बैठे हैं, अब कईयों का मन बाहर घूम भी रहा है, हाँ इसके बाद कितने बजे ट्रेन पकड़ना है, फिर वापस वहीं जाना है, फिर वही बात है, जो भी सोच रहे होंगे वॉट एवर, तो मन तो जा ही रहा है ना, मन के ऊपर तो किसी का रोक तो है ही नहीं। तो मन को जहां लगाना है, जितना लगाना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, इसका लगाम हमेशा हमेशा हमारे हाथ में ही होता है। प्लीज ये लगाम किसी और के हाथ में मत देना, तो जीवन बड़ा जीना दुबर हो जाएगा। ये लगाम हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए, है भी, हैं जी। और द लास्ट थिंग इज समेटने की शक्ति। आज तो आप जा रहे हैं तो यहां से क्या ले जाएंगे, जब आप आए थे क्या लेके आए थे, पूरा घर समेट के लेके आए थे, आपका लगेज कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? चार सूटकेसेस तो होंगे, हाँ चार दिन के लिए आए, कितना बड़ा सूटकेस होगा, चार ड्रेस होंगे और क्या होंगे, जरूरी चीजें होंगे बस ना, तो बहुत बड़ा सूटकेस कौन लेके आया है, हाथ खड़ा करेंगे, ओ क्या लेके आए प्राजी। अच्छा जब आप जाएंगे क्या ले जाएंगे, जो चीजें लेके आए थे वही लेके जाएंगे, है ना, है ना, और भी ले जाएंगे कुछ, ज्ञान ले जाएंगे, ज्ञान तो सूटकेस में तो ले नहीं लेके जाएंगे ना, वो तो बुद्धि में ले जाएंगे, हाँ जी सूटकेस तो वही जाएगा। एनीवे तो जब हम घर से किसी भी कार्य के लिए आते हैं वही चीज उठा के ले आते जो जरूरी हो, जो चीज जरूरी नहीं है वो तो घर पर ही रखा रहेगा, है जी, वो तो उठा के तो लेके नहीं आएंगे। इसी तरह ये तो छोटी 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 यात्रा है, पर हम वो यात्रा पर जा रहे हैं जो इस दुनिया को छोड़ करके हमको अपना घर जाना है, जहां से हम आए हैं वहां के लिए क्या ले जाएंगे, वहां क्या ले जाएंगे, हाँ? और कौन से कर्म ले जाएंगे, अच्छे कि बुरे। अच्छा जब हमें पता है अच्छे ही कर्म हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, तो उसको कलेक्ट करना शुरू कर, वो पैक करना शुरू करना है कि नहीं करना, हाँ जी कभी भी जा सकते भैया, ये ऐसी ट्रेन है कभी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, पर जाने वाले बंदे को तो तैयार रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं आ जाए ट्रेन आ जाए इसके बाद हम सूटकेस ढूंढे क्या डालना वो सोचे, तो हमारे लिए रुकेगा, ट्रेन तो चली जाएगी। तो ये संसार जो है बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। मान लीजिए अभी आपको जाते जाते एक बर्थडे पर जाना है और बर्थडे व्यक्ति को एक एक वॉच गिफ्ट देना है, आपके पास आधा घंटा टाइम है, आप एक बड़ा मॉल गए तो आपका आपके जो नजर है क्या ढूंढेंगे, नजर क्या ढूंढता है, घड़ी ढूंढेगा, है कि नहीं, वॉच ढूंढेगा, क्योंकि आपने वॉच लेने का निर्णय लिया। तो आप ये नहीं सोचेंगे इतना बड़ा मॉल क्यों बनाया भैया, इसमें जूते क्यों रखे हैं, कपड़े क्यों रखे हैं, ये क्यों रखा है सूटकेस, हम अरे ये तो मॉल है इसमें तो सब होगा, आपको क्या लेना, वॉच लेना, तो उसको ढूंढिए। आप नुक्स क्यों निकाल रहे हो? मॉल में तो सब होगा ही होगा, बिक्री तो सब करेंगे, पर आपको क्या लेना? उस पर आपकी नजर गड़ाए रखे तो ये संसार भी एक सुपर मार्केट है। इसमें सब होंगे, अच्छे करने वाले, बुरे करने वाले, सब प्रकार के लोग होंगे, सब प्रकार की बातें होंगी, आपको क्या लेना? इस पर नजर जमाए रखना। कभी भी दोष नहीं देना, न परिवार वालों को, न दुनिया को, न परिस्थितियों को दोष। ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये तो होगा ही, सुपरमार्केट है तो होगा ही सब प्रकार के लोग, आपको क्या करना? तो आप अपने कर्म जो है उसको करते वही जाएगा जी। तो बस वो सूटकेस में समेट करके जब हम मन से तैयार होंगे, जब भी ट्रेन आ जाए हम खुशी खुशी जाएंगे, क्योंकि हम तैयार हैं। जब हम तैयार नहीं होंगे तभी भी हमें डर लगेगा, हम तैयार नहीं हुए कैसे चले जाएंगे। तो मन से हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। यदि ये सारी बातें हमारे अंदर हैं तो हमारी जिंदगी बहुत सुखद, बहुत खुशी खुशी से, आनंद से हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और ये सारी बातें हमारे में हैं भी, ऐसे नहीं कहीं और से आएंगे, है, पर उसको एनहांस करना चाहिए, उसको और डेवलप करना चाहिए। और योग ऐसी विधि है जिनसे ये सारी बातें हमारे अंदर फुल फ्लेज्ड आ जाएंगे और हमारे जीवन में चार चांद लग जाएगा। फिर ये सारे अस्त्र शस्त्र के साथ जब हम वो कर्म क्षेत्र में जाएंगे, हम विजयी विजय होंगे। तो हे अर्जुन, कौन है अर्जुन? यहां बैठा हर इंसान अर्जुन है। तो जो वो कर्म क्षेत्र में अब जा रहे हो, उस कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये तमाम वेपन्स के साथ, शस्त्रों के साथ हमेशा आप विजयी रहेंगे। ओम शांति। एनी क्वेश्चंस? आप जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हाँ? हम चाहेंगे आप फिर आए एंड फिर इसका लाभ ले, फिर आपको जो भी यू नो दैट सेंस ऑफ रिलैक्सेशन थ्रू योर माइंड और योर बॉडी नीड्स, आई एम श्योर यू विल गेट बैक। एंड फॉर एवरी टाइम अ पर्सन नीड्स रिट्रीट, सो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर रिट्रीट। सो जब कभी भी आप रिट्रीट के सोच आए, ख्याल आए, आप अवश्य यहाँ आ सकते हैं। ये आपका अपना घर। यस प्लीज। या कम अगेन? ओके। समटाइम्स अ गुडनेस इज टेकन फॉर वीकनेस, यू नो, वो प्रॉब्लम, हमारी अच्छाई हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। देखिए, अच्छाई एक बहुत सुंदर इमोशन है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए, विवेक और भावनाओं का समावेश जीवन में अति आवश्यक है। जहां हमारे अंदर बहुत सुंदर भावनाएं हैं, उन भावनाओं के साथ विवेक का सम्मिलित नहीं है, धोखा खाएंगे। इसलिए विवेक, जितना इमोशंस है, हमारे अच्छाई हैं, उसके साथ विवेक का समावेश करना भी अनिवार्य है। सो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड लाइफ। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, वी हैव अ मिनट ऑफ साइलेंस बिफोर वी फिनिश एंड हैव अ वंडरफुल जर्नी and wonderful day ahead, and take care of yourself until you come back again. Yes, please. Come again? Okay. जब सब कुछ निश्चित है, भाई साहब का प्रश्न ये है, जब सब कुछ भी निश्चित है, जो भाग्य में मिलना है वही मिलना है, तो निर्णय का सवाल कहाँ पैदा होता है? सब कुछ भी निश्चित ही है, हा? तो निर्णय करना भी तो निश्चित ही है ना। तो करना चाहिए। अब सब कुछ निश्चित है, ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे, उठना तो है। तो एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, सो द पार्ट ऑफ योर थिंकिंग, पार्ट ऑफ योर डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, है ना। अच्छा, व्यक्ति आत्मा जो है वो लाइफ है, लिविंग है, और हर बार आप डिसीजन लेते हो, प्लीज एक बात सोचिए, ये भी मेरे सामने एक मौका है, एक मौका है। तो यदि इस मौके पर सही निर्णय मिल लिया, हो सकता है इसका फल तो मिलना ही मिलना है। हर अच्छे कर्म का फल अच्छा है, ये नियति है, हाँ या ना? हाँ, जब मेरा कर्म अच्छा है, अच्छा करने का मैंने ना है, तो क्यों ना ले। नियति क्या है वो हमें नहीं मालूम, पर अब फिलहाल मेरा फल अच्छा निश्चित। डेस्टिनी क्या है, नियति क्या है, वो भविष्य है जो मेरे सामने बंद पड़ा है, पर वर्तमान क्या है वो रे में है। जो चीज खुली है उसको कर लेना चाहिए। अब जो मेरे निर्णय लूं, मेरा डेस्टिनी बदल जाए, पॉसिबल। इंसान है, आत्मा है, हम ईश्वर के बच्चे हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। यस, इसलिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने भीतर के जो शक्ति को समझना अति आवश्यक है। हम इतना कॉमन है, हम इंसान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, हमारे भीतर बहुत शक्तियां हैं, कमाल की पोटेंशियल्स है। ऑल दैट वी नीड टू नो इज टू नो देम, अंडरस्टैंड देम एंड यूज देम। दैट्स इट। ओम शांति।